आज अपने इस सत्र में छह जो नए का एक ग्रुप है, तीन जोड़े हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो भी बात आई है वो बिल्कुल नई हो ऐसा नहीं है। प्रवचनों में कोई भी वक्ता हो गए इन बिंदुओं को छूता ही है। ज्ञान के प्रकाशक प्रभाव के आधार से ज्ञान और ज्ञेय का कोई संबंध है भी कि नहीं है, इसके आधार से ये चर्चा बहुत सुंदर, सरल, हृदय ग्राही, आध्यात्मिक इस तरह की चर्चा है। ये आपके सामने स्क्रीन पे पेज नंबर 324 खुला होगा, सर्वगत में और असर्वगत में आया। हेडिंग देते हैं ना सर्वगत और असर्वगत, इसके पेज में तो उसका पेज आते ही है ना। इसमें क्या है कि वो शुरू के पेज नहीं जुड़े या जुड़े वो अलग बात है, तो होने ही नहीं, शुरू के पेज है ही नहीं उसमें, तो उसका पेज अलग से आएगा ही नहीं। खैर देखिए, संक्षेप में अपन समझे, ये आत्मा सर्वगत यानी सारी दुनिया में लोकालोक में व्याप्त होकर रहने वाला है या नहीं, या असर्वगत है, हैं? तो आचार्य देव कहते हैं कि अलग अलग अपेक्षाओं से विचार किया जाए तो दोनों तरह की योग्यताएं इसमें पाई जाती है। ज्ञान की अपेक्षा विचार करो तो ये सारे लोग तो थोड़ो अलोक में भी फैलता है, ज्ञान लोकालोक को जानता है इसलिए वह सर्वगत है। तो लोकालोक को जानकर सर्वव्यापी होने का स्वभाव आत्मा में है, ठीक है। ऐसा होने पर भी वह अपने स्वदेशों से बाहर नहीं निकलता, इसलिए असर्वगत है। सिंपल बात है ये, हैं? जैसे पूजा में नहीं पढ़ते है ना, वैसे ही वो देह में अतः ही नाथ में शाश्वत करो निवास, तो अपनी सीमा में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते। ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत बना और प्रदेशों की अपेक्षा असर्वगत बना, ऐसे दोनों अपेक्षा से हैं। ये नए व्यवस्थाएं जानना इसलिए भी जरूरी है कि बिना उनमें सर्वगत नहीं कहेंगे, असर्वगत नहीं कहेंगे। कहीं तो आत्मा सर्वव्यापी है तो किसी को ऐसा भ्रम नहीं हो जाए कि वो विष्णु की भांति जैसे लोक में मानता है कि कण कण में है भगवान विष्णु, सारे लोक में व्याप्त रहते हैं, ईश्वर सब जगह मौजूद है, ऐसी बातें आती हैं। तो उसका सही संदर्भ क्या है वो अपने को मालूम होना चाहिए। देखिए इसमें जो उदाहरण दिए हैं वो बड़े बहुत सिंपल और एक तरह से देखा जाए तो एक फूल उदाहरण है। आत्मद्रव्य सर्वगत नय से खुली हुई आंख की भांति सर्ववर्ती है, सबने व्याप्त होने वाला है, और असर्वगत नय से बंद आंख की भांति अपने में रहने वाला है। देखो ये ज्ञान को सर्वव्यापी कहने का या जो जानने की क्रिया होती है उसमें वो पदार्थ हमारा ज्ञान पहुंच गया, ऐसे प्रयोग लोक में बहुत होते हैं। मान लीजिए कहीं दंगा हुआ हो तो जो पुलिस कमिश्नर है या कोई मिनिस्टर है वो बोलेगा शासन की स्थिति पर नजर बनाए हुए तो कैसी नजर बनाएंगे? अरे आप से देखते रहते हुए टीवी स्क्रीन पे 24 घंटा नजर बनाए पूरी अर्थ है। इसी तरह से आप कोई व्यक्ति दूर खड़ा है और कुछ बात कर रहा है, वहां से निकल रहा है, हमारी तरफ उसने नहीं देखा, तो हम बाद में कहेंगे आप वैसे उधर जा रहे थे, मेरी नजर पड़ी आपके ऊपर, तो क्या आप आपसे निकल के उधर पहुंच जाती है? नजर पड़ी का क्या अर्थ होता है? ज्ञान में आ गए, स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं, यानी बिल्कुल सूचनाएं अपडेट ले रहे हैं कि गंगा शांत हुआ कि नहीं, मेरी कितनी परसेंट जमीन है, कैसा क्या हो रहा है समाचार। तो हम जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तो होना जरूरी है ना, तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेना, इसको बोलते हैं स्थिति पर नजर बनाए हुए ऐसा। और इस सब देखो भैया बच्चा तालीफ जाने लगा, हम नजर रखना उस पर, तो कैसे रखेंगे नजर है? बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज जाने लगे हैं, कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कौन से उसके दोस्त हैं, कहाँ हैं, क्या है, उसमें नजर बनाए रखना, तो कैसी नजर? तो नजर शब्द का शब्दार्थ तो आंख होता है, लेकिन जो उसका लक्षणार्थ प्रयोग है, तो किस लक्षण से बात कही जा रही है वो ज्ञान की है, बस इतनी सी बात है। तो खुली हुई आंख, आंख खुली हो तो जितनी उसकी क्षमता है उतनी पहुंचती। भरत चक्रवर्ती की आंख सूर्य में विद्यमान जिन बिंदुओं तक पहुंचती, समझने आया ना? कान भी बड़े तेज होते, वृद्धिधारी मणिराज है, 900 योजन का, इतना योजन का, ये सब वृद्धियों में आता है, है? तो उनका ध्यान इंद्रिय ज्ञान भी इतना पावरफुल होता है कि ये सर्वगत का प्रयोग हुआ, लेकिन ज्ञान भले किसी को भी जाने, परिणमन को अकंशात प्रदेशों में ही होगा ना, कि बाहर चला जाएगा, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज हो, जड़ हो, चेतन हो, रूपी हो, अरूपी हो, छोटी हो, बड़ी हो, वो जितना उसका स्पेस है उसको छोड़ के बाहर कहाँ जाएगा? देखो इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, नए क्रमांक 20-25 में, 20 से 25 ज्ञान और ध्येय संबंधी चर्चा है। ज्ञान लोकालोक को जानता है, अतः जानने की अपेक्षा सर्वगत है, परंतु अपने असंख्य प्रदेशों में ही रहता है, इसलिए असल गति। तो लोग में ऐसा ही प्रयोग होता है, इनकी बड़ी पहुंच है। कई दफे मैंने यहाँ देवलाली में उदाहरण दिया है, जबलपुर में जहाँ हम रहते थे बचपन में, जिस स्कूल में पढ़ते थे, हमारे पड़ोस में एक सज्जन थे, उन्होंने हमें पूजा करना सिखाया और पूजन का रस हमें उनकी संगति से ही लगा। वो डेली करते थे तो हमको सुन के बड़ा आनंद आता था, और दस लक्षण में जब सामूहिक पूजा होती थी, कोई विद्वान को आते नहीं थे, छोटा गांव था, प्रवचन होते नहीं थे, तो दो दो दस तीन तीन घंटे लगातार 10-10, 12-12 पूजाएं होती थी और सामूहिक जरूर। तो वो एक बात कहा करते थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, तो किसी से मान लो झगड़ा हो जाए या कुछ बात हो जाए तो देखो हमसे संभल के रहना, हम हाथ ऊंचा करते हैं कि वो इंदिरा गांधी तक पहुंचता है, ऐसा भूला करते हैं। तो हम इसका क्या अर्थ लगाया जाए? इंदिरा गांधी तक हाथ कितना जब उनको क्या विष्णु कुमार जैसी बिटिया जैसी दिखा है, जैसे मानसूत्र पर्वत तक उनका हाथ पहुंच गया, ऐसे ही का हाथ पहुंच। इसका अर्थ यही है कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमको सब लोग जानते हैं, हम सबको जानते हैं, और भले वो इंदिरा गांधी के कपड़ा थी उन्हें अंदर न घुसने दिए। तो ये पहुंच बहुत है यार, ये सब सर्वगत नैतिक प्रयोग है। सकल ये तो केवल ज्ञान की अपेक्षा बात है, अन्यथा सर्वोत्तम ज्ञान के हिसाब से लिया जाए तो ज्ञान जिस ध्येय को जानता है तो उस ध्येय में व्याप्त हो गया, उस ध्येय तक पहुंच गया, ऐसा भाषा का प्रयोग होता है। कोई कहे तो उसे मिथ्या व्यक्ति का सर्टिफिकेट नहीं देने लग चाहिए। एक तो किसी को ना सर्टिफिकेट देना चाहिए ना किसी से लेना चाहिए। आत्मार्थी का एक मार्ग नहीं है किसी को प्रमाणित करना या अपने को सिद्ध करना, ये तो डूबने का मार्ग है। सकल ये रियायत कदपि, देखो ये सर्वरत्न का प्रयोग है और निजानंद रत्नी इसमें असर्वगत नय की झलक है। झलक शब्द का प्रयोग किया है इसमें, झलक है माने असल में तो असर्वगत नय प्रदेशों के हिसाब से लागू पड़ता है, लेकिन इसमें निजानंद रत्नी में भी जो उनका अपनापन, उपयोग की स्थिरता, उपयोग का ध्यान का भेद यानी जो कुछ भी है सब अपने स्वरूप में ही है, वो स्वरूप का ही प्रकाशन है, स्वरूप में ही नहीं है केवल ज्ञान भी स्वरूप का ही प्रकाशन है। सूर्य सर्वगत है या असर्वगत है? सूर्य जो है उसको सर्वगत माने या असर्वगत माने, तो उसकी किरणों के माध्यम से दुनिया के पदार्थ प्रकाशित होते हैं इसलिए सर्वगत है। लेकिन सूर्य तो ज्योतिष देवों का विमान है वास्तव में, तो वो विमान क्या नीचे आ जाता है क्या? हाँ, भक्तामर में ऐसा एक प्रयोग भी है कि वो सूर्य जो है दूर रहता है और उसकी कमलों मात्र से, उसकी प्रभा मात्र जो है उससे कमल खिल जाते हैं। अपने असंख्य प्रदेशों में रहकर लोकालोक को जानने की योग्यता। अब देखो ये ज्ञान की शक्ति भी है, आपको बहुत प्रकरण ऐसे मिलेंगे जो दूसरी जगह शक्ति के अर्थ में प्रयोग है, यहाँ योग्यता के अर्थ। इसलिए जो अपन गुण धर्म में और शक्ति में परिभाषाओं के हिसाब से अंतर कर लेते हैं, समझ में आया, वो एक ही पॉइंट में तीनों चीजें लागू होती हैं। ये कल ही मैंने कहा था ना आपको, दूसरा दिन है ना, कल बताया था घोड़ा दौड़ना ये उसका गुण है, अब तेज दौड़ता है या मंद दौड़ता है ये उसकी योग्यता है, उसकी दौड़ने की सामर्थ्य है, कितना दौड़ सकता है, 120 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, ये उसकी शक्ति की बात। और दूसरे घोड़ों से तुलना की जाए तो अपेक्षा से बात हो गई, तो अपेक्षा होने से वो धर्म में लागू पड़ी। जहाँ अपेक्षा खड़ी हो वहाँ धर्म समझना, जहाँ निरपेक्षता हो वहाँ गुण समझना। एक गुण जो काम करेगा तो अपने उसमें काम करने का पावर होनी चाहिए। आँख देखना ही आँख का गुण है, और कितना देखती है ये उसकी शक्ति, समझ में आया। और वो दाई है ये बाई है, ये इधर है ये उधर है, ये सब धर्म में जाए। अपने असंख्य प्रदेशों में रहकर लोकालोक को जानने की योग्यता सर्वगत धर्म है, और इसे जानने वाला ज्ञान किसको, उस योग्यता को, उस स्वभाव को, उस धर्म को जानने वाला ज्ञान वो सर्वगत नय है। लोकालोक को जानते हुए भी उससे भिन्न रहने की योग्यता वो असर्वगत धर्म है, और उसे जानने वाला ज्ञान वो असर्वगत नय। अन्य मत में विष्णु को सर्वव्यापी कहा गया है, परंतु आत्मा अपने ज्ञान द्वारा लोकालोक में व्याप्त होता है, यानी मात्र जानता है। और देखिए जिस तरह से गुरुदेव बताते हैं कि ये 47 शक्तियां आचार्य देव ने लिखी समय सार में, तो टीका में उन सबका प्रयोग आया है, तो जगह जगह से निकाल दी। यहाँ से जीवन तो जीवो जो है ना, जीवो चरित्र दर्शन, हाँ दूसरी गाथा, तो कहते उसमें से जीवन की शक्ति निकाली, तो मूल गाथाओं में से और उनकी स्वयं की टीकाओं में से, ऐसे धर्म का प्रयोग भी जगह जगह आपको मिलेगा। सर्वगत नय का प्रयोग वाली जो गाथा है बहुत प्रसिद्ध है, आधा राम पमानम नानम ले पमान मुद्दम नेयम लोया लोयम सम्मा आजादु सब उदय। उसमें मूल में ही शब्द पड़ा है, आत्मा ध्यान प्रमाण है। प्रमाण माने आत्मा कितना, जितना ज्ञान उतना, समझ गया है, ज्ञान जितना, जितने जे उतने, गजब बात। और वेद वहां क्या है, लोकालोक है, तो फिर आत्मा कितना हुआ, लोकालोक पर महान कर्मा आधा भी सब गए हैं। प्रवचन साथ व्यासा 23 में भी इसी अपेक्षा आत्मा को सर्वगत कहा गया है। सरल है ये, यहाँ पर अपने यहाँ पर स्वाध्याय नित्य जो नियम से चलता है जैनिक, उसमें ये सब बातें आती ही हैं। वास्तव में जो सैकड़ों मंडलों में प्रतिदिन स्वाध्याय की जो एक धारा प्रारंभ हुई है, अब वो कभी क्षीण हो जाती, कभी सरबत हो जाती, कहीं चलती है, कहीं डूब जाती है, ये प्रणाली का गुरुदेव के शासन में जो जन्मी, उसके माध्यम से समाज का बहुत उपकार हुआ। ये तो स्वाध्याय नाम की चीज ही हमारी दिनचर्या में थी नहीं। उपदेश देने वाले जो श्रावकों का काम है दान और पूजा, ऐसा शास्त्रों में आता नहीं, दान पूजा मुखम, जब आप लोग कैसा कमाते हो तो दान करना आपका कर्तव्य है, और इंद्रियों के भोग भोगते हो तो पाप बनता है, तो उसको दान करने के लिए पूजा करना आपका कर्तव्य, दान पूजा। और तो आगे बढ़ा तो फिर प्रतिमान ले लो, लक्ष्यम ले लो, यानी कि स्वाध्याय एक अनिवार्य अंग होना चाहिए जीवन का, ये गुरुदेव ने सिखा दिया सबको, वास्तव में है। इन दोनों नियमों को जानने से ज्ञान का स्वरूप ज्ञात होता है कि वो समस्त ज्ञेयों को जानते हुए भी अपने स्वदेशों में रहता है। हर नए के जो वर्णन किया है इसमें, नए अंत में, तो अंत में ये जरूर कोशिश की है लिखने की कि उससे हमें लाभ क्या है, उससे हमें क्या स्वरूप समझना चाहिए। अब ये ज्ञान की तरफ से बात है, ज्ञान जाता है कि नहीं जाता है ज्ञेयों में। अब उलट के ज्ञेय की तरफ से बात करते कि ज्ञेय ज्ञान में आते कि नहीं आते हैं, उसके लिए उन्होंने एक और ग्रुप बनाया, शून्य में और अशून्य में। आत्मद्रव्य शून्य में से खाली जैसी भांति अकेला भाषित होता, खंडहर पड़ा है, समझ में आया। हमारे देवदानी के कई बंगले जो है वो शून्य में के उदाहरण है, और कुछ बंगले अशून्य में के उदाहरण है, दोनों है। अपने यहाँ की चार बात है भाई। वो तो जब ये जगह बनाई थी तब ये सोच के थोड़ी बनाई थी कि हम कोई 12 महीने यहाँ आगे रहेगा, वो तो हमें यहाँ पड़े पुण्य के उदय से है। नहीं तो जब कार्यक्रम होता है तब आएंगे, भोजना लेने भोजन करेंगे और अपने बंगले में ठहरेंगे, आनंद से लाभ लेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट था ना डॉक्टर साहब, है अशून्य नहीं से लोगों से भरे हुए जहाज की भांति मिलित भाषित होता है। इस प्रसंग में मैं ये कहा करता हूँ, अगर आज ये नए आचार्य देव लिखते तो वो ये लिखते कि अशून्य में से मुंबई की लोकल ट्रेन की भांति, जिसमें सांस लेने की भी जगह न हो गए, ऐसे ट्रेन की भांति बातें होता है। ये ऐसे लोग की पूजाओं में, स्तुतियों में, अन्य अन्य ग्रंथों में आपको ऐसे सब प्रयोग मिलेंगे, शून्यता और अशून्यता। देखिए पिछले जोड़े में ज्ञान की प्रधानता से कथन किया गया था, जिसमें सर्वगत और असर्वगत में ज्ञान की तरफ से बात थी, और इस यहाँ ज्ञेयों की प्रधानता से कथन किया गया है कि ये ज्ञान में आते हैं कि नहीं आते। संपूर्ण ज्ञेयों को जानते हुए भी आत्मा में किसी भी ज्ञेय का प्रवेश न हो, ऐसी योग्यता को शून्य धर्म कहते हैं। तो ज्ञेयों की अपेक्षा देखो तो आत्मा शून्य है, क्योंकि उसमें ज्ञेयों का अस्तित्व है ही नहीं। और ये तो प्रश्न साहब ने जो अपने पढ़ा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन भी दिवाली में विधान किया था, तो उसमें तो ये बहुत क्लियर है और उसमें तो दोनों नयों का प्रयोग है भाई। इंडियन नील मणि के उदाहरण वाली जो गाथा है उसमें उन्होंने जीवों में प्रविष्ट रहकर के लिए और अप्रविष्ट रहकर के दोनों शब्दों का प्रयोग, जीवों में अप्रविष्ट भी है और प्रविष्ट भी है, हैं? ऐसे जो जीव जो है ज्ञान में मानव संकोच तीर्ण हो गए हो, इसके लिए आप देखिए सैतीस ही गाथा की टीका समय साल की 200 गाथा की टीका या 199 की किसी प्रवचन साल की मानव में ये ज्ञान में डूब गए हो, संकोच तीर्ण हो गए हो, है ज्ञान को ज्ञानियों ने पी लिया हो, ज्ञान में पी गए हो, लघु सबसे खोज में तो एक अध्याय ही इसके लिए वो भी बहुत जगत का है इस मामले में, है ऐसा लगता है जैसे एक उदाहरण आता है स्तंभ पर जैसे चित्र बना दिए कोई स्वाध्याय आज बनाया, उसने जो पिलर्स हैं उसमें 3 साल के 24 की रचना करी, ऐसे ज्ञान के पिलर में लोकालोक की रचना हो जाती है। तो इस तरह से गया काल की अपेक्षा देखो जो ये संबंधी आकार बनता है जीवों का जानना होता है उस अपेक्षा से देखो तो ज्ञान में वो लोकालोक से भरा हुआ है। इसमें दिया है वो कई बार जो कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव है। तो इस तरह से ज्ञान में अशून्य का प्रयोग होता है, तो उसमें सारा लोकालोक सिंधु में बिंदु के समान देखो मूल संस्कृत में कालों का नाम सलोक का नाम यह विद्या दर्पणाए थे, जिनकी विद्या यानी केवल ज्ञान विद्या लोकालोक को प्रकाशित करने के लिए दर्पण के समान आचरण करती। अब दर्पण में अपना चेहरा है कि नहीं, दर्पण में कोई चीज होती है कि नहीं होती, नहीं होती इसलिए शून्य है, लेकिन दिखता सबको जो दिखाई तो दर्पण का है तो वो अशून्य है। ऐसे प्रयोग है ज्ञान में, ऐसी योग्यता है तो उसमें ये झलके इस योग्यता को अशून्य धर्म कहते हैं, उधर सर्वगत मय और इधर अशून्य धर्म, मानो ज्ञान और वे का एग्रीमेंट हो कि हम तुम्हें जानेंगे तो वे के जानो आप हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी समझ लो अपना आकार आपको समर्पित कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि फोटो ही तो जैसे मान लीजिए कोई अपनी फोटो उतार है तो अपने में चिंता होगी कि हमारा तो कुछ चला जाएगा, बल्कि बड़े शौक से उतरवाते हैं वीडियो वाले को चेक करके रखेंगे भैया ध्यान रखना जरा, यानी अपने फोटो लोग देखें तो आजकल तो वो आधुनिक साधन है तो यूट्यूब पे जावे व्हाट्सएप पे जावे वीडियो चले तो उसने ऐसा विकल्प किसी को नहीं आता कि मेरा कुछ चला जाए, तो फोटो में हम हैं ये अशून्य नहीं का प्रयोग है और उसमें हमारा कुछ भी नहीं है ये शून्य नहीं का प्रयोग। ज्ञान ऐसे ही है भैया, ज्ञान में मात्र ज्ञान का वेदन करना स्वभाव के करीब जाना हो तो ज्ञान के शून्य स्वभाव की ओर देखना, समझ में आया ना, शून्य स्वभाव की ओर, ज्ञान में ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है, जैसे खाली खंडहर जो है मकान कोई खाली पड़ा है तो उसमें कुछ है कि नहीं है, बहुत बड़ा है खाली पड़ा है, मतलब 10 आदमी ठहर सकते कितना स्क्वायर फुट है, समझ में आया ना, एक एक कमरा कम से कम 200 स्क्वायर फुट का है तो जगह है कि नहीं, आकाश जगह है कि नहीं, अरे कुछ नहीं तो हवा तो होगी तो यानी कोई पदार्थ नहीं है इसलिए खाली है, भौतिक पदार्थ कोई नहीं है इसलिए खाली है, लेकिन उसमें हवा है इसलिए वो गड़ा हुआ है। तो ज्ञान में ये का एक कण भी नहीं आता इसलिए ज्ञान शून्य है, लेकिन चमक उसकी इतनी जबरदस्त है कि उसमें लोकालोक झलकता है इसलिए ज्ञान अशून्य ज्ञान कहो या आत्मा कहो। कैवल्य कला में उमन पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। इस पंक्ति में अशून्य नय का प्रयोग स्पष्ट झलक रहा है। अशून्य नय ज्ञान में समस्त जीव झलकने की योग्यता बताता है और शून्य नय ज्ञान की जीवों से अत्यंत भिन्नता बताता है। भिन्नता है ये ज्ञान में नहीं आए तो ये जो बात निकली ना कि ये ज्ञान में आते नहीं है, इसको इस भाषा में कन्वर्ट किया गया कि ज्ञान जीवों को जानता है। जो ये ज्ञान में आते ही नहीं आए तो जाने, नहीं आए तो क्या जानेंगे। इसके सामने ये बात कही जाती है कि ऐसी कहां तर्क है कि जो ज्ञान में आए ज्ञान में घुस जाए ज्ञान उसी को जाने। ज्ञान ज्ञान में रहे ये में रहे तो भी ज्ञान जीव को जाने, ऐसी चमत्कारिक सामर्थ्य ज्ञान में है। तो कहते भैया वो ज्ञान और जीव दोनों निर्देश हैं, फिर भी ज्ञान जीव को जानता है ऐसा कहके जो आप संबंध स्थापित करते हो ज्ञान का जीव, ये का ज्ञान और ज्ञान का ये रिश्तेदारी खड़ी कर दी ना, ये व्यवहार हो। कोई ज्ञान में ये संबंधी जानना नहीं, मैं बार बार कहता हूँ ये संबंधी ज्ञान ऐसा बुझे क्यों हो, ये नहीं ज्ञान को पर ये संबंधी पुरानी ज्ञान पर्याय संबंधी हटाओ ना, इतने रखो कि पुरानी ज्ञान पर्याय नहीं ज्ञान खड़े कर तो पुरानी ज्ञान पर्याय नहीं ज्ञान है। फिर वो पर्याय है क्या जिस पर्याय ने अपने स्वयं को प्रकाशित किया है, वो पर्याय दर्पण के समान है और उसमें उस पर्याय की अपना सूत्र स्वावलंबन लक्षण योग्यता उसके अनुसार जैसी उसकी योग्यता किस ध्येय को जानने की है वैसा चित्र कहो के आकार कहो वो सब उसमें दिखाई पड़ता है। ये चमत्कार है ज्ञान का। इसलिए देखो अनंत गुणों की हैसियत आत्मा में तो एक तरीके की, जैसे भारतीय संविधान में मान लो देश में 125 करोड़ लोग हैं तो वो सब कितने होंगे 60 करोड़ 70 करोड़ समझ में आए ना। तो जितना राष्ट्रपति का एक वोट की जो कीमत है वही कीमत एक रिक्शा चलाने वाले की भी है, मजदूर की भी है, नागरिक की हैसियत से दोनों बराबर हैं, समझ में आया। लेकिन पद की अपेक्षा प्रतिष्ठा की अपेक्षा और संविधान में जो पावर दिए हैं जिस पोस्ट वाले को उसके हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति की और मजदूर की कोई तुलना है, समझ में आया ना। है प्रधानमंत्री की और उनके ड्राइवर की के उसके सिक्योरिटी गार्ड की उसके पीए की कोई तुलना है, बोलो खरा है कि नहीं बोलो। इसी तरह से वस्तु की संरचना में उसका जो निर्माण है वस्तु का उसमें ज्ञान रतन चाहे को प्रिय अस्तित्व वस्तु के जितने हैं सामान्य गुण विशेष गुण सब एक का रोल है सबका। जैसे अस्तित्व एक गुण है वैसे ज्ञान भी एक गुण, समझ में आया। प्रिय तत्व भी एक गुण है, अगुल वस्तु भी एक गुण है, ऐसे ज्ञान भी एक गुण है। लेकिन जो ज्ञान का वर्ग है उसका कार्य है उसका जो स्वभाव है उसके हिसाब से देखा जाए तो ज्ञान राष्ट्रपति जैसा है, वो मुख्य है। इसलिए परिस्थिति में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। अस्तित्व ही नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ रहेगा। अस्तित्व की ज्यादा महिमा है कि ज्ञान की ज्यादा महिमा, अस्तित्व भी है अस्तित्व आत्मा का अस्तित्व तो रहेगा तब तो ज्ञान उसमें बैठेगा, आत्मा ही शून्य हो जाएगा अस्तित्व ही हो जाएगा तो ज्ञान कितना रहेगा, दर्द नहीं रहेगा तो ज्ञान कितना रहेगा। तो महिमा अस्तित्व भी हुई ना इस हिसाब से है, लेकिन अस्तित्व मात्र नहीं बोला, वस्तुत्व मात्र नहीं बोला, प्रदेशत्व मात्र नहीं बोला, क्या बोला ज्ञान मात्र। अपना शरीर का एक उदाहरण मैं प्राय यहाँ दिया करता हूँ कि शरीर की संरचना में कौन से अंग का महत्व कम है बताओ, किडनी की जरूरत नहीं है कि जो लिवर की जरूरत नहीं है, आंखों की जरूरत नहीं, अंतरंग बहिरंग जो भी है, क्या हार्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? किडनी नहीं है, लिवर नहीं है, और भी जो शरीर के अंतरंग जो पार्ट है, शरीर की संरचना में सबका एक स्वरूप है, लेकिन जो व्यक्ति की पहचान होती है वो उसके चेहरे से, वो उसके फेस से होती है। बोलो आप, है चेहरे जिसके पहचान से है ना, ऐसे ज्ञान जो है वो आत्मा का चेहरा है, वो फेस है। ज्ञान को देख करके आत्मा जाना जाए, आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान ज्ञाना जनियत करो चीज, तो ज्ञान की वास्तव में अपार महिमा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे मोक्ष मार्ग में रत्न की स्वानुभूति की महिमा है, स्वानुभूति ही मोक्ष मार्ग है, उसी तरह से ज्ञान ही आत्मा, ऐसा समझना चाहिए। ये तो अद्भुत प्रकरण है, इसलिए ये 43 में वाला विषय मुझे इसलिए पसंद आता है, रूखा भी नहीं लगता। ये नए है, 43 नए है, इसमें क्या है, ऐसी ऐसी योग्यताएं हैं कि जो आत्मा की मर्यादा को, उसकी कार्य सीमा को, उसके स्वरूप को, उसके वर्ग को बहुत क्लियर करती, बहुत सी मिथ्या भ्रांतियां तोड़ती। कोई सर्वथा अकर्ता मान ले, सर्वथा अभोक्ता मान ले, तो आएगा करती नहीं, अकर्ती नहीं, भोगती नहीं, उधर अकर्तत्व शक्ति है, इधर कर्तृत्व नहीं है। समझ में आया? देखो अभी 24 नंबर और 25 नंबर, ज्ञान ये अद्वैत नहीं और ज्ञान ये द्वैत नहीं, ये बड़ा विशिष्ट है। पहले जोड़े में क्या था, ज्ञान की तरफ से बात थी कि सर्वगत भी है, लेकिन ज्ञान अपने प्रदेशों को छोड़ के बाहर नहीं निकलता, इसलिए आत्मगत है। आत्मगत बोलो कि असर्वगत बोलो, ठीक है, अपने नहीं है। इसमें एक और मार्मिक बात है थोड़ी, असर्वगत में कि प्रदेशों की अपेक्षा तो असर्वगत है ही, कि अपने आत्म प्रदेशों को छोड़कर शरीर के प्रदेशों में भी नहीं जाता, और जो दूध और पानी के समान मिले हुए हैं, कौन आज कर्म और कई दोनों नील चीज वक्त, तो इस कर्मी के प्रदेशों को, इस परमाणुओं को छूला नहीं, ऐसा आरंभ करूंगी ऐश्वर्य स्वभाव वाला है। तो प्रदेशों की अपेक्षा तो असर्वगत है ही, स्वभाव की अपेक्षा भी असर्वगत। क्या मतलब इसका, ज्ञान में जो ज्ञान पने का स्वभाव है वो दर्शन में नहीं है, वो सुख में नहीं है, वो चारित्र में नहीं है, वो विंद्र में नहीं है। ज्ञान की प्राइवेसी, ज्ञान का स्वयं का निज स्वरूप, वो ज्ञान के अलावा कहीं नहीं, इसलिए ज्ञान असर्वगत। और ज्ञान में दूसरे का प्रवेश नहीं है, इसलिए ज्ञान शून्य है। समझ में आया ना, परब्रह्म से तो शून्य है ही, लेकिन गुण भेद के हिसाब से देखो तो एक ज्ञान में अन्य गुणों का प्रवेश नहीं है। अगर एक गुण में दूसरे गुण का प्रवेश हो जाए तो फिर एक ही गुण बचे हो, गुण ही नष्ट हो जाए, तो ये तो क्लियर है ना आपको है। तो ये अभी ये वाला जो तीसरा ग्रुप है, ज्ञान ये अद्वैत नैतिक आत्मद्रव्य, ज्ञान ये अद्वैत नैतिक महान ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि की भांति एक है। बोलो, चाहे वो आते हैं कि नहीं आते, ज्ञान जाता है या नहीं जाता है, ये आते हैं कि नहीं आते। अब कहते ज्ञान और ये एक होते हैं कि जुड़े जुड़े हैं, तो इसमें दोनों बताए हैं भाई साहब, घबराना नहीं है, जहाँ जो नए लगे तो लगा लेना, लेकिन यहाँ व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं किया, यहाँ नए ही खड़ा कर दिया अलग, अद्वैत नए और द्वैत नए। आत्मद्रव्य ज्ञान ये अद्वैत नए से महान ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि की भांति एक है, और ज्ञान ये द्वैत नए से परिचय प्रतिबिंबों से संयुक्त दर्पण की भांति अनेक है। अनेक पना भी है, एक पना भी। आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वो ज्ञेयों को जानकर उनसे भिन्न रहते हुए भी ज्ञेय को जानने वाली पर्याय क्या बोला? जीव को जानने वाली पर्याय अर्थात जीवाकार ज्ञान में तन्मय लेकर परिणमे, इस योग्यता को ज्ञान ये अद्वैत धर्म कहे। यहाँ जीवाकार को ये शब्द कहकर संबोधित किया है। और ये अपने को पढ़ा था जब हम इतने जयपुर में पहुंचे थे तो सर्वासिद्धि वगैरह जो ग्रंथ है उसमें ज्ञान पर ये का उपचार दिया जाता है। तो घट ज्ञान को भी घट बोला जाता है। क्या? घरे को जानने वाला ज्ञान घड़ा, कपड़े को जानने वाला ज्ञान कपड़ा, इसमें बहुत बड़ा उदाहरण निकलता है, है? आत्मा को जानने वाला ज्ञान आत्मा है। समझ में आया? जो ज्ञान स्व संवेदन ज्ञान में अपने चैतन्य स्वरूप का, आत्मा माने अपने स्वरूप का वेदन करता है, तो आत्मा देव है तो ज्ञान को आत्मा कहा जाए। लकड़ी को जानने वाला ज्ञान लकड़ी, भले उसमें लकड़ी आती नहीं है, वो अलग चीज है। लकड़ी जैसी जानकारी आकार उसने बना तो उनसे तन्मय होता है। किससे? ये पदार्थ से नहीं, वो ये संबंधी जो अपने में प्रतिबिंब बनता है उससे तन्मय होता है। तो उस ज्ञाकार को ये बोला तो ज्ञान और ये दोनों अद्वैत यानी एक हो गए। बात समझ में आई थोड़ी सी? सोचने की बात, ज्यादा जटिल नहीं है। ये बात कही है आपने कि ज्ञान में जो चित्र बनता है उसको क्या नाम देना, दर्पण में हमारा चेहरा दिखता है उसे वो क्या है और क्या कहना? तो चेहरा है तो चेहरा कहना। ये से कहाँ बना? ये जैसा, हाँ, वो ये युवक जी ने अपने प्रवचनों में जो उनके छठी गाथा के प्रवचन है आजकल आ रहा है यूट्यूब पर, एक ग्रुप है जिसे ध्वनि प्रसारण मेरठ से चलता है, उसमें बढ़िया युवक जी के प्रवचन लेना प्रारंभ किए हैं। और अपने चैतन्य जी चहल पहलने पर है ही, देखो दर्पण में क्या दिखता है, दर्पण में दर्पण दिखता है तो इससे लोक व्यवहार चलता है क्या? जब दर्पण में दर्पण ही दिखता है तो आप श्रीमान चाहे खड़े होते उसके सामने, पत्थर दीवार के सामने खड़े रहो। समझ में आए ना? तो सर्वथा एकांत ऐसा नहीं है, दर्पण में दर्पण दिखता है कि दर्पण अपने सत्यता से तन में है, लेकिन दर्पण में जो आकाश बना है उसको भी चेहरा कहने में आया तो दर्पण चेहरे से तन्मय होता। चेहरा किसका परिणाम? दर्पण में दिखने वाला चेहरा किसका परिणाम है? चेहरे का कि दर्पण का? दर्पण का। तो दर्पण किससे तन्मय होगा? दर्पण वाले चेहरे से तन्मय। वो मोर का उदाहरण है अपने छाती सदा छाती गाथा में है, ऐसी जीवन गाथा में मोर का उदाहरण है। तो इस तरह उसे मोर कहना ये ज्ञान पर जय का उपचार करना। क्या बोला? दर्पण में जो मोर दिख रहा है उसे मोर कहना ये ज्ञान का जय का ज्ञान पर उपचार करना। कि दर्पण में जो मोर है वो दर्पण है एक्चुअल में, लेकिन उसका कलर और आकार मोर जैसे ही है। ये यूं कहो तो बाहर वाला जो मोर है वो उसमें निमित्त है, ऐसा नहीं कहो तो निमित्त निमित्त संबंध की अपेक्षा उस दर्पण की स्वच्छता के परिणाम को मोर नाम से कहना ये ज्ञान में जीव का उपचार करना। ठीक है? तो दर्पण उससे तन्मय है कि नहीं? उसे प्रणमता है ना, तो दर्पण और वो मोर अद्वैत हो गया। और ये बाहर वाला जो मोर है ये जुदा रहता है, इसलिए ज्ञान और ये द्वैत हो गया। देखो इस ये को जानने वाली पर्याय अर्थात जीवाकार ज्ञान में तन्मय रहकर परिणमे, इस योग्यता को ही ज्ञान ये अद्वैत धर्म कहते। और इसे जानने वाला ज्ञान ज्ञान ये अद्वैत में कहलाता है। ज्ञान ये अद्वैत में से जीवाकार ज्ञान को ही उपचार से ये कहकर आत्मा को अभिन्न कहा जा रहा है। ये सब जो दर्शन में नए चक्र में खुलासा किया है और नए विज्ञापन में है उसके आधार से ये पॉइंट आउट करके इसमें लिखा है। और इसको जीवाकार ज्ञान में ही कलाकार ज्ञान है, वो किसकी कला है? ज्ञान की कला है। और जो कुछ झलकता ज्ञान में वो वेद नहीं बस ज्ञान है। इन दोनों पंक्तियों में ज्ञान ये अद्वैत में का ही प्रयोग है, ज्ञान चिंतन में वो ज्ञान ही है। ऐसा आत्मा में ऐसी योग्यता है कि उसमें ये प्रतिबिंबित होते हुए भी वो वेदों से भिन्न रहता है, ये उसका स्वभाव है ज्ञान का। अरे उसे जिंदा रहना हो, ज्ञान को ज्ञान रूप रहना है, तो वेद से जिंदे रहना ही पड़ेगा ऐसा, नहीं तो अग्नि को जानेगा और ज्ञान अग्नि बन जाएगा तो हो गया काम, तो दूसरे को कैसे जानना है कि नया ज्ञान कहाँ से आया है। ये योग्यता ही ज्ञान के द्वैत धर्म, द्वैत माने जुदा है, इसे जानने वाला ज्ञान ज्ञान के द्वैत में कहा जाता है। प्रतिबिंबित पूरी देना वही पर चिन्मय को आंच नहीं, ये कायदा प्रयोग है ज्ञान के द्वैत नय का। तो गया वाली प्रतिबिंबित है, लेकिन वो प्रतिबिंब वास्तव में ज्ञान का परिणाम है। तो गया को गे से कोई को स्थिति भी नहीं है, चिन्मय का को आंच नहीं, उसका जो चैतन्य स्वभाव है उसको आंच भी नहीं आती, यानी जरा भी प्रभावित नहीं होता। इस पंक्ति के पूर्वार्ध में अशून्य में और उत्तरार्ध में ज्ञान के द्वैत नय का प्रयोग झलक रहा है। वो एक लाइन में दो नये प्रतिबिंबित पूरी ये आवरी, ये अशून्य नय का प्रयोग हुआ, ये उसे ज्ञान में है भी लग गई, लेकिन चिन्मय का तो आंच नहीं, तो ज्ञान के भिन्न दिखाई दिया। इसमें डॉक्टर साहब का एक जो अंत है वो मैंने इसमें दिया है, इनके नए चक्कर में 313 पेज पर है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ये भगवान आत्मा जब इसमें क्यों मैंने को समझता है, एक पैराग्राफ देवों को जानता तो है पर ना तो ज्ञान देव में जाता है और ना देव ज्ञान में आते, दोनों अपने अपने स्वभाव में सीमित रहने पर भी ज्ञान जानता है और देव जानने में जानने में आते हैं, ऐसा कहना पड़ता है। अंत हस्ताव नंबर आते आते कहने में एक जाना, इसको कहते जानने में आया, ज्ञाता भगवान आत्मा और देव का लोक रूप सर्व पदार्थों का यही स्वभाव है। ज्ञाता भगवान आत्मा के उक्त स्वभाव का प्रतिपादन करना ही उक्त छह नयों का प्रयोजन है। ज्ञेयों को सहज भाव से जानना, सहज भाव जानने के लिए कुछ तालाबंदी नहीं है, कोई उत्सुकता नहीं है, है कि जीव में पानी आ रहा हूँ मैं इसको जान लू, तो ये तो लोभ है, ये कटा है, ये तो ज्ञान थोड़ी है। जो ज्ञान की योग्यता अनुसार जानने में आ गया तो जान लिया, हाँ जानना होने दो। अभी कहा था ना दिवाली के दर्शन में, जानना होने दो। देवों को सहज भाव से जानना भगवान आत्मा का सहज स्वभाव है, अतः न तो हमें पर पदार्थों को जानने की आकुलता करना चाहिए और न नहीं जानने का हट करना, मुझे नहीं जानता, मैं तो जानते ही, मैं तो जानते ही, क्या नहीं जानते, देवों को नहीं जानते कैसे पता चला। आप जानते हैं बाधित लोग है, हम ये फोटो है ना, मैं इसको नहीं जानता, तुमको पता कैसे चला कि तुम फोटो को नहीं जानते, पहले ही बताओ आया समझने है, है? ये क्या बात की, मतलब कोई खुंदड़ी बात नहीं है, है? वो फोटो को नहीं जानते, मतलब ज्ञान में जो भी चित्र बना है वो फोटो नहीं है, वो ज्ञान की ही इमेज है जो ज्ञान से बनी हुई है, सब कारक उसका ज्ञान नहीं है, बस ये है। लेकिन जो है तो मुझे नहीं जानना ये अपने चिंता तलक में तो आया है ना, कि ज्ञान में ये जानने में आते तो ऐसा लगता ज्ञान मलिन हो गया, तो वो ज्ञेयों को ज्ञान को धो करके नहीं मुझे साफ करना है, ज्ञान को निर्मल करना, इसलिए ज्ञेय को नहीं जानना, जानने से मलिन हो जाए। दर्पण में कोयला जानने में आए तो दर्पण काला हो जाएगा, है तो ज्ञान दर्पण से ही गया जीता है। अरे बाहर के पदार्थ की तो छोड़ो, अंदर के जो विकल्प है, आतुरता है, दुख दर्द है, इंद्रियों की भूख का सुखा मास है, राग है, द्वेष है, कटाय है, पुण्य पाप है, ये परिणाम ये भी ज्ञान में नहीं आते हैं भाई साहब। ज्ञान ये भी ये है ना, ये सब पर्याय गत योग्यतानुसार जो ये ज्ञान में सहज भाव से व्याप्त हो जाए उन्हें निद्रांत भाव से जान लेना ही उचित है। अन्य कुछ विकल्प करना उचित नहीं है। आत्मा का कारण है, आत्मा के एक सहज ज्ञान स्वभाव को ही ये सहज अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। ये बहुत सुंदर ये तीन जोड़ों का ये ग्रुप है। अब इसके बाद नियति नये और अनियति नये, इनकी चर्चा अपन करेंगे। स्वभाव में और अस्वभाव में, काल में अकाल में, पुरुष काल में और बैल में, ये पांच जोड़े हैं और चार लेकर हैं अपने पास, चार हैं दृष्टि में। हाँ तो इतना आज ये समझ में बहुत है, पांच समवायदा इतना सही। अभी का समय हो गया इसलिए यही विराम देगा। पूजा लेना है लाभ आज सवेरे जो अजीब लक्ष्य संबंधी पूजा हुई, एक दो कमेंट आए मेरे पास, लोगों के मन में तो बहुत होगा लेकिन उसमें लोगों को काफी अच्छा लगा। उसका एंगल जो है, डॉक्टर साहब आपकी ड्यूटी आप घर में पढ़ना हूँ आपकी सभा है, तो इसलिए रजनी भाई को ये विकल्प आया कि 15 दिन के लिए कपल जो है जो कल जो पूजा आने वाली है, जो हो गई तो हो गई लेकिन कल जो आने वाली है थोड़ा उसके बारे में चर्चा करें। तो मैं कोशिश करता हूँ, इतना तो दो दिन से आप सबके ख्याल में आ गया होगा कि केवल इसमें मतलब रासायनिक मात्र नहीं है बल्कि उसको नियम भारतीय विशेषता है, उसमें कलश बहुत है, 311 कलश है नियम भार। तो यथा स्थान अपने कलशों का प्रयोग करके ही अर्घ समर्पित किया है, और कलशों में जो रस भरा है उसके बारे में तो कुछ कहने के लिए न समय है न निर्णायक है। बार बार ये कलशों से आनंद आमृत रस छलकता, रस पीने के लिए आज मन मचलता, इसीलिए ये अर्घ समर्पित आज है, कलशों का ही अचार या अनुवाद। और गाथा के बाद भी जहाँ जहाँ भी वो आएगा कलशों के आधार से वर्णन आएगा तो ये छंद मिलेगा आपको, आनंद अमृत रस भरे कलशों में मुनि राज। अभी मैं चौथा देख से बता रहा हूँ, आनंद अमृत रस भरे कलशों में मुनि राज, शुद्ध भाव आराध कर पाऊं शिव साम्राज्य। ये हर जगह शुद्ध भाव उदार चलेगा ना कल, और फिर व्यवहार दायित्व भी चलेगा, तो उसने ये छंद रखी उसे समझ जाना कि इसके बाद वाला जो छंद है वो कलश में से लिया, तो उसकी सूचना है। जो अक्सर आएंगे उनकी चर्चा तो अपन बाद में करेंगे। देखिए कौन सा पेज लेना, 70 शुद्ध भाव उपकार भी लेना ना, ये वाला सभी भाई 70 इसमें भी है वो। अब कल से कलश तो है इसमें, पूरे कलश ही रखें मुझे लिखा है 59, 62, 64, 69, 70 और 71 इतने कलशों का पर्यायवाद है। वचनामृत मुनिराज के परम शांत सुख रूप कलशों में रस भर दिया शुद्ध भाव के रूप है। शुद्ध भाव अधिकार की सबसे बड़ी विशेषता ये है तो उसमें जो एक कृतानी व्याय भाव है उसका बहुत सुंदर वर्णन उसमें आया है। ये समस्त शुभ कर्म भोगियों के भोगों के मूल सदा अहो मुनीश्वर परम तत्व अभ्यास कुशल है चित जिनका, भव से मुक्ति प्राप्ति हेतु तुम उस समस्त शुभ को छोड़ो इसमें क्या क्षति सार तत्वमय उभय समय का कार जो उभय समय माने कारण समय सार और कार्य समय सार। देखिए है ग्रंथ नियम का, लेकिन स्वयं मुनिराज जो टीकाकार हैं उन्होंने अनेक स्थानों पर समय सार शब्द का प्रयोग किया है। अब उनको ऐसा नहीं लगा कि हम नियम सार की चिंता कर रहे हैं, समय सार शब्द क्यों लेते हैं, ऐसा उनके अंदर कोई भाव नहीं था। समय सार माने शुद्धात्मा होता है, इस अर्थ में उन्होंने ये लिखा। और ये बहुत मार्मिक है, ये खंड ये शुभ कर्म जो है भोगियों के भोगों का मूल है। अभी एक दो दिन पहले मैंने एक व्याख्या सुनी थी कि जो लोग पुण्य को यही बताते हैं उनकी बुद्धि की बलिहारी है। कुंड कुंड आचार्य ने कहीं पुण्य को ले लिया है और लिखा भी है तो कौन से पुण्य को ले लिखा है। जिस पुण्य के फल में जीव पाप करता है, आपको गाली मिल गई, अच्छे अच्छे को सत्याग्रह समागम मिल गया, व्यापार आपने खूब चमकाया, तो आमदनी अच्छी हुई, फिर से आप ये भाव में चले गए, पांच दिन के रिश्ते भोग भोगे, ये पापा ने मुझे पुण्य है ना, उसको ये कहा है। जिस पुण्य के हृदय में जिनवाणी मिलती है, समोकरण मिलता है, ये सब धर्म के कार्य मिलते हैं, ये उनका वो पुण्य तो उपाधि है। मुझे विचार आया कि वो पुण्य का फल तो अपन भोग ही रहे, तो क्या करना, वो दोबारा कोई करना है। तो सर समस्त शुभ कर्म भोगियों के भोगों के मूल हैं, और मुनीश्वर जिनका चित्त परम तत्व के अभ्यास में कुशल है, तो आचार्य देव उनके लिए संबोधन करते हैं कि तुम भव से मुक्ति की प्राप्ति के लिए समस्त शुभ को छोड़ो। देखो ये आश्रम तत्व का स्वरूप बताने का प्रकरण है, तो छोड़ो या नहीं छोड़ो ये क्रिया की प्रधानता वाली बात यहाँ नहीं है। समझ में आया, छोड़ो का मतलब उसे उपाधि मत मानो, उसे मोक्ष मार्ग मत मानो, बस इतनी बात है। भाई हमारे तुम्हारे हाथ में है, मुनिराज के हाथ में है, पंच महाव्रत छोड़ दे, जब भाव छोड़ देंगे तो सब मुनिराज रहेंगे फिर है। तो छोड़ने का कहने पर भी ये इसमें क्रिया नहीं लेना चाहिए, बात इतनी है। और इसमें क्या क्षति है, अजब बात कि समस्त शुरू को छोड़ दोगे तुम तो मुनिराज को क्षण भर के लिए वो विकल्प छूट भी जाता है, क्षण भर के लिए कहीं से छूट ही जाता है ना वो विकल्प। तो कहते इसमें क्या नुकसान होगा, उभय समय का साथ कारण समय सार पर दृष्टि गई और कार्य समय सार प्रकट हो गया। वैसे इसको जो भाई साहब दो तीन दिन पहले बता रहे थे कि जो पिताजी कारण समय सार का आश्रय हुआ और वो मार्ग का कारणभूत कारण समय सार पर्याय वाला रचना पड़े वो प्रकट हो गया। दुष्ट पाप बन को कुठार हर दुष्ट कर्मों को नष्ट किया, ये अलंकार है सब पाप रूपी गंध के लिए कुल्हाड़ी के समान, पर परिणति से दूर सदा रागो नदी पूर्ण विनष्ट किया। पर परिणति से दूर है और राग का जो समुद्र है उसे सुखा दिया मुनीश्वर ने। विविध विकार हनन करता जो सुख सागर का नीर अहो, ये समय काल के विशेषण है, ये सब समय काल के गीत गा रहे हैं। विविध विकार हनन करता अनेक प्रकार के विकारों का नाश करने वाला, और जो सुख सागर का जल, सुख रूपी समुद्र का जल, वो तो अपन संस्कृत में डालते इसमें तो पेट भी बहुत बढ़ जाते, मजा तो संस्कृत वाणी पढ़ने में ज्यादा आता है और उसका समय भी काम मिलता है। काम कलंक विनाशक सार समय मम रक्षा शीघ्र करो, हे समय सार कैसा है जो तीन लाइनों में उसके विशेषण बताए और आगे लाइन में काम कलंक पंचेंद्रियों के विषयों की कामना का कलंक मिटाने वाला, ऐसा समय सार मेरी रक्षा करे, ये शुद्ध भाव अधिकार की जयमाला है। वो भक्तता द्वारा प्रेरित होने वाले आत्मन जो भव मुक्त होना चाहो तो निज आत्म को शीघ्र करे। सरल है तुम्हें भव से मुक्ति चाहे जो चाहो अपना कल्याण, यही बात है। वास्तव में अपन सबको कृपया क्या विचार करें, कैसा तत्व चिंतन करें और जानने के लिए बात का करो क्या सचमुच में हम भाव के लोगों से छूटना चाहते हैं। जैसे उसमें आया ना एक जीव जीवराज को जानना, यदि मोक्ष की है कामना तो जीवराज को जानना। तो हम जो कर रहे हैं वो हमारे रूटीन के हिसाब से ही करते हैं। कैसा समागम मिल गया, ऐसा वातावरण मिल गया, ये धर्म मिल गया तो चलो अच्छा है, बढ़िया पसंद आता है तो अपने हैबिट में आ गया। इसलिए करते हैं कि सचमुच में राग में दुख लगता है, चैतन्य स्वभाव की महिमा आती है, इसलिए समागम में रहते। तो मुमुक्षु का मोक्ष की कामना है कि नहीं, ये चिंतन जरूर करना चाहिए। इससे अगर नहीं होगी तो वो पैदा होगी थोड़ी बहुत है। मेरे आत्म को शीघ्र भजो, अनुपम ज्ञान सदा जो सहज शक्ति मनियों की खान, सर्व तत्व में सार भूत जो निज परिणति सुख सागर मग्न, सुख सागर में मग्न ऐसी परिणति वो उसको याद किया। जिसने ज्ञान ज्योति द्वारा अब अंधकार का नाश किया, आनंदादि अतुल महिमा धारी जो रहे अमूर्त सदा, ज्ञान ज्योति से पाप रूपी अंधकार, पाप का अंत लगता कई बार बता चुके। अब माने क्या होता है, पाप नहीं पुण्य और पाप, ज्ञान माने आत्मा और अब माने अनात्मा, ऐसा कई बार उन्होंने यहाँ बताया। तो जो पुण्य पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, आनंदादि अतुल महिमा धारी है, अपने में अविचलपन से रहे शील का मूल सदा, भव भय हारी मुक्ति से ही पति ईश्वर को वंदन करता। दोनों तरफ जाता है, व्यवहार में देखो तो जो अनंत सिद्ध परमात्मा है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के स्वामी है। अभिनंदन का एक तरफ में आया था, भव संतति का श्री पति भोगा अभियानी, भव मुक्ति बच्चे संसार रूपी वधु का संसदी वधु का स्वामी, ऐसा समझाया। बंधन हो या मुक्त अवस्था, इसके बीच में जो आज जो कलश आए थे ना, अजीब अजीब बात, वो कहते हैं कि देखो मैं एक मेरे दोस्तों ने भाई साहब को बताया था, बहुत ही जोरदार था वो, ऐसा आपको बार बार सोचते हैं फिर भूल भी जाएंगे, इतना गलत का है वो गलत। एक तो देखो 50 पेज है, सभी पढ़ो मेरे साथ, अर्थ करने की जरूरत नहीं है। 50 पेज नीचे अजंड, हे प्रभु जल चेतन की हिंदु नहीं को रहे जो नीचे की भूमिका वाले हैं, जो भी शरीर जड़ है मैं चेतन हूँ, ऐसा जो भेद के विकल्प है वो निचली भूमिका में होते, जो निष्पन्न यानी निश्योर हो गए हैं, परफेक्ट है जो चैतन्य के ध्यान है, उन्हें जल चेतन के विकल्प ही नहीं सदा के चैतन्य की अनुभूति होती है, लेकिन ये जल है मैं चेतन हूँ इस तरह का कोई विकल्प नहीं है। इसी तरह का एक और है, वाह 56 से देखिए, 55 से लीजिए, नीचे 4 लाइने हैं, सबसे नीचे पूरे जल द्रव्य चेतन है अब जीव सदान का चेतन, जल विकल्प हो प्रथम भूमि में करे न योगी जन निष्पन्न, जगपुर जग तन में नैकेतन परमात्मा में राग ऐसी सुंदरतायों की होती है।
बोलो कोई सो सकता है जड़ से भेद नहीं और चेतन में राग नहीं। जब लालचंद भाई जयपुर आते थे तो बहुत मतलब उनके समझ लो अभूतपूर्व प्रवचन उस समय होते थे। हम लोगों का तो सब नया नई क्षेत्र में आए थे तो बड़ा जिज्ञासा रहती थी। एक बात बहुत बढ़िया कहते थे, पर्याय से द्वेष नहीं और द्रव्य की खेत नहीं, ज्ञान को मध्यस्थ होना चाहिए। जैसे तराजू का आजकल तो कांटे वाटे खत्म हो गए, उसको इलेक्ट्रॉनिक आ गया सब, लेकिन जो कांटा वाली जो तराजू होती है ना, तो दोनों तरफ जितना वजन रहेगा तो वो कांटा बिल्कुल सीधी में रहेगा, न इधर झुकेगा न इधर झुकेगा। ऐसे ज्ञान पर्याय को पर्याय जान लिया, द्रव्य को द्रव्य जान लिया। अब उसमें पर्याय से द्रोह या द्वेष होना है, वो पर्याय को नहीं देखना है, पर्याय ही बोलती है। हम तो द्रव्य दृष्टि बात, द्रव्य दृष्टि क्या है, द्रव्य दृष्टि क्या है, वो भी पर्याय है। तो इसी तरह जड़ पुद्गल में देश नहीं और चेतन में राग नहीं, गजब हो गई है। तो चेतन में राग नहीं तो चेतन का आश्रय करना ही नहीं मिलेगा। मैं स्वयं मैं हूँ ना, उसमें राग का सवाल कहाँ है। यदि मैं अपने बेटे का ध्यान रखता हूँ तो स्कूल भेजता हूँ, तो कॉलेज भेजता हूँ, तो जो खर्चा हूँ, हाँ बस सच बात करते हो तो क्या मैं दुनिया भर के बेटे को पालूंगा क्या? अपना बेटा है तो उसके प्रति जो कर्तव्य है वो करते हैं, इसमें राजनीति का कहाँ सवाल। पड़ोसी है तो कुछ पड़ोसी अपने बेटे का करेगा, मैं अपने बेटे का करूँगा, ये तो लोक की व्यवस्था है ना। ऐसे चैतन्य मैं हूँ तो मैं चैतन्य हूँ, बात खत्म हो गई, पृथ्वी की स्थिति हो गई। अब इसमें उसके प्रति राग होने का क्या सवाल। राग को तब माना जाए तो उसको हम पर माने, फिर राग की बात करें। तो चेतन मेरा है, मैं चेतन हूँ, ऐसा कोई विकल्प भी खड़ा नहीं हूँ। ऐसी शुद्ध दशा यतियों की होती वे रहते दिख रहा। इसी तरह यहाँ देखिए वापस इकहत्तर देश से बंधन होना मुक्त अवस्था, विविध मूर्त द्रव्यों का जाल, शुद्ध जीव के नित्य स्वरूप से भिन्न सर्वदा मौखिक माल, शुद्ध वचन ये श्री जिन पति का बुद्ध पुरुषों को कहूँ सदा, अहो भक्त त्रिभुवन सिद्ध परम सत्य को जान सदा है। सरल फिर अंतरिक छंद का महावीर प्रभु को वंदन करने वाला भक्त अमर नंद मुकुट रत्न से पूज चरण जिने। अब ये पहले लिखा गया है, भक्तामर पहले लिखा गया है, ये इतिहास वाले जाने। भक्तामर सुरंत मौली मणि प्रभाम जन्म मृत्यु और जरा विनाशक जे अविनाशक उपदेश कौन वीर भगवान महावीर की सामनाथ भट संत जिसे वर में घर से सत्य तीन नौका द्वारा में पार बहु रही को पार। इस तरह है कल आप लोग एडल्ट हो गए, बैठे हो आप लोग, आकल का नहीं है ना, इसलिए मैं कल का बजट भी अभी बता देता हूँ। हैं कहाँ से शुरू करेंगे अपन? पेज नंबर 59 से और 84 तक कितने हो गए? 25 है ना, तो हो जाएगा आराम से। बीच में गाथाएं हैं तो वो अपन लेते नहीं है, तो बीच पे लिए तो अपने सारे आप तक आराम से बहुत हो जाएगा, नहीं तो पूजे भी हो जाएंगे है। लेकिन इसमें व्यवहार चरित्र अधिकार जब आए तब तो आप इंटेंशनली उसको ध्यान से पढ़ना तो बहुत अलौकिक आनंद आएगा। चलो हो जाएगा है, आपने नंबर करवा दो तो हो गया। देखो ऐसा है फिर आगे के सारे कार्यक्रम, देखो यहाँ तो निश्चय की है श्रोताओं में सब भगत लोगों में तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी दूसरी जगह जहाँ नए लोग रहते हैं फिर वहाँ टाइम भी ज्यादा विद्रोह भी नहीं होने वाला है। ये 27 दिसंबर से 1 जनवरी 2022
एक बार और आ रहा हूँ, है 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक सिद्ध खेत अपना जो द्रोणगिरी सिद्धायतन है उसमें ये नियम का विधान होगा। तो बस बीच में आइए राष्ट्रीय जीवन नियम शास्त्र गुरुदेव के प्रवचन ही नियम शास्त्र, और जो अपना जीवानु मंथन या गुरुमानु मंथन का जो अपन समझ लो चलाया है वो ही शैली से चलेगा। आधा घंटा गुरुदेव का व्याख्यान व्याख्यान ऐसी शैली चलेगी। मेरी इच्छा है कि इस बार आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे, आ जाइए भाई सभी लोग। कहाँ गया वाणी के लोग
अलग अलग कुछ है प्रश्न चलो
पंडित अरुण जी माइक दे दे
बहु भाई
जितना कार्ड मंगलं भगवान वीरो मंगलं कुलकुंडायो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शान्तिः।
अपना न्याय का मानना चाहूंगा।
स्पर्श करो अपने
अग्नि के होने पर भी धुआं होगा अन्न इसके दोनों धुने का प्रयोग हो गया फार्मूला यह है साध्य के होने पर ही साधन होता है साध्य के बिना साधन नहीं होगा तो अग्नि अगर धुआं देख के ऐसा अनुमान क्यों लगा दे और वह अनुमान पक्का नहीं होता इसलिए होता है कि नियम अगर जो मालूम है कि धुआं है तो अग्नि जरूर होगी क्यों होगी क्योंकि अग्नि के बिना धुआं नहीं होगा तो अग्नि के होने पर ही धुआं होता है ये तत्व करके अग्नि के बिना धुआं नहीं होता ये अहिंसा है रत्न के होने पर ही मूलमान होता है ये तत्व करके रत्न के बिना मूलमान नहीं होता ये अहिंसा है तत्व करके बिना और ये बाधा करेगा फिर मानवान है मेरे कौन सूर्य है और मैं तो आत्मा प्राप्त करने के लिए इसका आश्रय लेना चाहिए कुछ सूर्य की प्रधानता से मैं को सूर्य कहते हैं और भगवान ने व्यवहार का विशेष नहीं बनाया शीघ्र की आत्मा इसलिए मैं सूर्य है यह अध्यात्म शैली की लक्ष्य है आरंभ शैली में सकला देवी और एकला देवी सकला देवी माने जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करे तो वो श्रेष्ठ हो गया और जो अंत को ग्रहण करे तो वो समझ लो उसका एक पार्ट हो गया तो अंत के बिना अंत होता ही नहीं है तो आदम कहते हैं प्रमाण का मन जैसे दोनों उसमें प्रश्न है ना क्या करना चाहिए प्रमाण के द्वारा वस्तु को जानकर सुधरने का आग्रह करना चाहिए सुधरने का मन सुधरने के विषय का भाव बनता है हाँ फिर मात्र जो वैसे तो सभी जो योग्यताएं भर रहे हैं ना वस्तु में कुछ कर्म के हृदय से होती है विषय से होती है संयोजन से होती है अनित्यता है तो किस कर्म के उदय सब कहते हैं स्वभाव है सभी दर्शन वालना में भाव सभी स्वर्ण वालना में भाव फिर जो पहला वाला है वो चैतन्य मात्र को बताने वाला है तो चैतन्य मात्र है उसमें गुण बजाय का भेद नहीं करना तो वालना में भाव अच्छा प्रश्न है ये अनित्य धर्म द्रव्य का स्वभाव है या पर्याय है का वो अनित्यता पर्याय में होती है लेकिन वो पर्याय अनित्य हो गए ऐसी योग का वो द्रव्य है क्या बोला पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो और नष्ट हो गए ऐसा स्वभाव कितना होता है वो द्रव्य है इसको अगर द्रव्य की पर्याय गति योग्यता क्या बोलेंगे द्रव्य में रहने वाली पर्याय गति योग पर्याय संबंधी पर्याय के बारे में ऐसा हो गया बाकी एक बार जो बात नहीं जो उपत्ति वाले फलोपत्ति शब्द है वो इन चार दो साधन साधन को होना साधन का होना और साध्य का होना साधन का नहीं होना ये सब कई सब एक प्रश्न है हमें प्रति एक गुरु का श्रद्धा नौ का श्रद्धा चतुर का श्रद्धा एवं शुद्धात्मा का श्रद्धा होने पर ही आत्मा भौतिक नहीं होता जिनको होते हैं ये चारों के साथ होते हैं जो ये भोजन पाते हैं तो जिनको सच्चाई के प्रबोध में ये जवाब दे ये बोल मगर करते हैं क्रम से नहीं होते दिल हम लोग जो प्रधान में चरण की दुआ है जबकि लालच में भी मुख्यतः रहती है सर्वान प्रधान में सत्तों का विचार रहने का है सर्वर दुनिया में बहुत अधिक का प्रदर्शन रहने का है जब हो जाए और नहीं होगा तो जो दर्शन है और जिन लोगों को कर्म देने और
उनका उत्तम होने पर ही यथार्थ निश्चय दर्शन अनुभूति प्रकट होता है। वो उपयोगी होता तो उसके लिए कहा जितना भजन एक बार व्यक्ति के लिए इच्छा करना किसी तरह का तो जितना भजन कहना चाहिए उसका जितना उपयोग जरूर लक्ष्य होना चाहिए वो नहीं हो पाता। या तो जानकारी के लेवल में टिक जाता है या करना मन का और जीवन में ऐसा देख करके मदद का लड़का है तो हो गया तो शायद वो यहीं पर खो जाए। उसका अंतरंग प्रवर प्रकार विवेक होना चाहिए तो उसके लिए कहा है कि उसमें अप्रकाश और उत्तर की कामयाबी होती है। गर्भवती है तो बालकों में अंदर का ज्यादा प्रभाव होगा और प्रसाद में अंदर लगता है करने को होगा लेकिन वो करने वाला प्रसाद नहीं अपने ज्ञान में वस्तु का यथार्थ रूप ही उपाधि पूर्वक का मौका मिल रहे हैं इतना पक्का हो जैसे समय ज्ञान भर ऐसे मेरे दोनों कुछ नया है देखना दुखी सुनता है पूरा क्षेत्र और उपलाम पर प्रभाव पड़ा जैसे अभी मन करते हैं केंद्र मुक्ति गौतम से पूछते हैं भगवत चंद्र ब्राह्मण के धर्म करके कई चाले सर्वप्रथम कई कंपनी सरकारी सर्वप्रथम के भले आप जानते होगा संस्कृत का तो था लेकिन इसका उसको भाव वर्णन नहीं होगा। ऐसे हम केवल शास्त्र परंपरा देखना शुरू स्वर दूर विज्ञान करूँ शुद्धात्मा कर्म परमात्मा सब सुन लेने जान लेने लेकिन अमूल प्रकृति नहीं आएगी तब तक वो कार्य नहीं होगी और दूसरी चीज अपने करने के लिए योगा हो गया तो काहे कोई आपका काम वहाँ करके सब तो निर्णय यथार्थ होना चाहिए तो वो निर्णय के बल के फिर निरंतर हर इंडिया में उसका उद्योग स्वरूप व्यक्ति चिंतन मन में रहता है और जब स्वरूप ध्यान करने के लिए उद्यम बंद होता है तब जो रसपूर्ण निधि में निधि बताई है उस निधि को कह सकते हैं जब बुद्धि पूर्वक को अपनाता है बाकी को उनकी जन क्षमता होता है और उसकी चिंता जिसको सच्चा निर्णय होता होता ही कि मेरे उसका दर्शन नहीं होगा आत्मा का प्रभाव जैसा आत्मा का महान आदि आएगा और आता है जो महात्मा है वो अपने स्वभाव पर आना चाहिए वो अपने ज्ञान में आएगा तो ज्ञान को स्वभाव की प्रति ज्ञानात्मक होगी और फिर श्रद्धा भी उपलब्ध हो जाएगा उसकी प्रकट होगा और जैसे 242 से ज्यादा है तो प्रथम साजी उसमें तो हमने शंकराचार्य उनको भगवान कहते हैं कि जो जाति संस्कृति यथाप्रम संस्कृति जैन जैन प्रकृति उसका नाम महेंद्र धन और जैन जैन अनुभूति उसका नाम समय ज्ञान और जो वैराग्य जो क्रियाति है जिनसे परिणति उसका नाम रूप है तो अपनी जो प्रकृति सही होती हो तो चाहे समझदार हो चाहे मौका बताकर पहले जानना यथार्थ होगा और जानना यथार्थ होगा तो वो जानने में अपने को शासन तत्वों के बारे में पूजन तत्वों के बारे में पूजन प्राप्त होगी उनमें हिंदी उपाधि ऐसा मैं और ऐसी प्रकृति जानना कितना होगा तो सामान्य ज्ञान कारण और उसको प्रधान कार्य के अंदर कहने आएगा लेकिन जब लगेंगे तो जब वो जिंदे आत्मा प्रकट होगी तब वो ज्ञान मंत्र ज्ञान ले जाएगा फिर और मनोकृष्ण सेवा उन्होंने कि ये जो ज्ञान अपना जैसा वो अपने उन तत्वों में लगता है समय निकले निकल जाए अपने को कोई समय बर्बाद हो गया नहीं लगता तो वो कहते हैं कि जो प्रश्न उन तत्वों के निर्णय में लगना है दूसरा नहीं लगता इस तत्व के ज्ञान से उनकी भूल है तो उसमें दर्शन हो गया है इसीलिए अपने साथ ज्ञान से जाए का निर्णय करते हुए और उसमें अपना मन आए और उस पर मैं भी सब उन्होंने छूट है तो प्रेस ये बहुत अनुभव क्यों नहीं होता तो मैं उसे जानना चाहता हूँ कि आपको ये कारण प्रदान हो गए और प्रकृति क्यों तो अपने आप जवाब आ जाएगा कि कहीं ना कहीं को नो खुद ही खुद को अपने आनंद हो जाए। निर्धारण निर्णय निधि ध्यान और भाव भाषण का अलग अलग क्या स्वरूप है। कर्म बुद्धि क्या इस वक्त नियम दशा में हो जाते हैं फिर क्या दिमाग और उपाय होते हैं उपाय होते हैं तो मेरा तो निर्धारण निर्णय निधि ध्यान और भाव भाषण का अलग अलग क्या स्वरूप है। जैसा कि सवेरे कहा था और मैंने कि जब हम ध्यान में देखना सुनते हैं तो देखना सुनना और देखना लब्धि होना लब्धि होने वाले भाव होना दृढ़ श्रवण पूर्वक भाव श्रवण के बराबर उसके बाद ख्याल में आए और उसके साथ निर्णय निर्णय माने निर्धारण चाहिए आपको मेरे लिए नहीं लाएंगे यह तो मेरे को बहुत अच्छा एक अंतरम भगवत प्रसाद को पड़ता है और जान लिया जाता है कि ये जो होना हो गया तो निर्णय आए किसी गुरु बोलते न हूँ खास परमात्मा को लक्ष्य कर निर्णय कर तो पर कहाँ तक होंगे मैं भी बात हूँ वो अपना खुद का जान प्रकार खुद करेंगे लेकिन ध्यान मेरा सब उसका अभियान सीधा चिंतन नंबर होती हो रहा और भाव आसन इस प्रकार की विकास पाई हूँ यानी जो बात पकड़ा और उसने अपने को वहाँ भाषित हो गया कि यह अरे यहाँ तक काम है जो ठंडी गंभीर पहले वर्षों में भाव भाषण हो गया करके कम तो इसकी बात हो भूखा है कुछ उनको रोटी मिल जाए तो वो कहीं भी मिलता तो भाषण होता कोई घर खुला देखा हो तो घुस जाता है डरते डरते घुसेगा रोटी मिले वहीं बैठे नहीं खाते मैंने दवाई तो कभी दूसरे दुनिया में बैठे खाएगा और दूसरे दिन खराएगा और वहाँ मकान ना ही खराए बोलो डॉक्टर और वो तो रोज तक को आपको खा दे तो फिर अब क्या करेगा वही कहते खाना उनकी नौकरी बना देते हैं उसको इतना ज्ञान है कि कल हमने झूठ की थी और आज कल मैंने देर जब भी थी रोटी और आज बाई जल्दी हुई और उसको भगा दो नहीं बैठेगा कि ये भाव आसन जो तरह का होता है ये सब होता है वो होता है और सरल लब्धि के गुण क्या ये सब सभी सब दशा में हो जाती है फिर वो भगवान चार लब्धि तक आ जाती है अपने आप में ही पढ़ा वहाँ तक उसने देखना भी सुनिए निर्णय भी जाए देखना लेकिन उस निर्णय के साथ निर्धारण में बहुत बदल गया विद्यानंद स्वामी पार्टी जी हैं निर्धारण में आपको जो यहाँ पर कलश लिखा है कौन से नंबर का ऐसे कप्तान दिए ग्रंथवा सबको बहुत बहुत अरे जरा सोचो मैं कई बार सोचता हूँ आते हैं हमें तो देने आप ही कर दिए कर्मों की कर्मों की कर्मों की अभी जो आते हैं तो मेरे नहीं मिला बीस माह की बीस माह बाईस माह छह दिन लगा था कर्मों की कौन बात कई कर्म नहीं दिखाया यहाँ कर्मों की यहाँ तक तो मर गए थे तो वही उनका मानना है कि जिंदा हूँ क्या प्रत्येक मैं वहाँ मरा मैं इनको कर्पता चंद्र आकर अपने स्वरूप सत्ता मंदिर जाए अपने स्वरूप और सत्ता चंद्र चंद्र भगवान और माता अपना सामर्थ्य जाने के लिए ये सब कर्म कभी तो दर्शन में हो जाते हैं और जब हो जाता है तो वो सिर्फ ज्ञान लाने के लिए जगत में न होगी वो उसका सृजन आत्मा की विवेकानंद का वो उपयोग स्वरूप कर्मों का निरंतर प्रकाश है हो जाता है तो सदन सुरक्षा जिसको महात्मा करेंगे और उसके आगे उपाय उपाय तो मुख्य और उसके बोलते हैं सरकारी बोलते हैं इस बार बोलते चलती है जब कारण कार्य की बात चलती है तो अपने कारण का उपलब्ध नहीं हो और उन्हें कार्य कार्य जीवन को कार्य न हो समय का कारण और वो भी कौन सी बताए कार्य उसको देखना चाहिए उसको कहते हैं और अगर वो मुक्त कारण और बंदे की क्रिया का कारण मानोगे तो जब भी मोक्ष हो गया कोई बंदा चिंता क्यों करेंगे, वो किसी का कारण काजी नहीं है। तो उससे आपने जिससे आपने बंद न हो गए और ये गुरु कहता है देखना अनंत और अमित अजल तो दुख और दुख कहता इसलिए उसका आश्रय लेना चाहिए, उसको कारण का कारण नहीं मानो। सामने जाकर दूसरी बार गलत होंगे तो रुपये आश्रय और पूरा भोग मार्ग और गुरु के उसके आश्रय से होता है, इसलिए उसको प्रधान कारण कहेंगे वो अपेक्षा। अगर
शक्तियों का वर्णन जानकर आत्मा को शक्तिमान के प्रति कैसे समझ करना, शक्तियों का वर्णन जानकर आत्मा को शक्तिमान के प्रति कैसे समझ करना, तो आत्मा स्वयं शक्तिमान है। प्रश्न समय आत्मा को शक्तिमान के प्रति कैसे कर्म करना, तो आत्मा स्वयं ही शक्तिमान है। आचार्य अवसर मुझे और प्रश्न पूछने का वो समझ में आ गया है, वो ये है कि शक्तियों का वर्णन जानकर निंदक को प्रश्न समझ में आ जाएगा, ये वर्णन शक्तियों के द्वारा है लेकिन है शक्तिमान वर्णन शक्तियों का है, ये वर्णन शक्तियों का नहीं, ये वर्णन है शक्तिमान का, जिसकी शक्तियों का वर्णन करके उसकी महिमा आए तो अपने आप उसके कर्मों का हो जाएगी। प्रश्न है कि कर्मों का कैसे होगी, उसकी तरफ भावना में जो भी वर्णन हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उसमें यही समझना है, ये वर्णन शक्तियों का नहीं शक्तिमान का है, ये तो खुद ही शक्तियों का वर्णन है। ऐसी अनंत अनंत शक्तियाँ उस शक्तिमान में बनी हुई है और वह शक्तिमान कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जब ऐसा ज्ञान महिमा वाला हो जाएगा उस महिमा के पीछे कर्मों का दौड़ी दौड़ी आ जाएगी, और जब तक महिमा नहीं आएगी तब तक इतना ही उद्देश्य में उस ओर कर्मों का नहीं हो पाएगी, चाहे हम कहो चाहे न कहे। जब तक महिमा न आए शक्तियों का वर्णन इसलिए किया गया तो वर्णन इसलिए किया गया कि जीव को अपनी महिमा नहीं आएगी, जीव को अपनी निजी महिमा नहीं आई है। शक्तियों का वर्णन करके उसको अपनी महिमा बताई है और मैं शक्तिमान हूँ, ऐसी अनंत शक्तियाँ मुझे हैं। जब ऐसी महिमा आएगी तो उसके उनका अभ्यास हो जाएगी। प्रश्न है कि क्या अज्ञान के आत्मा में भी शक्तियों का निर्मल परिणाम उजल रहा है, अज्ञान की आत्मा में भी शक्तियों का निर्मल परिणाम उजल रहा है, जो सामान्य शक्तियाँ हैं उनका उजल रहा है, लेकिन जो विशेष शक्तियाँ हैं जो सबन करने के साथ ही जिनका मूल पैदा चारूला और ऐसा समझ में ना आ गई तो यह भी पहली जीवन से समझी है। अब ये जीवन के समझी के कारण से अनाज मुझे जीवन का जीवन नहीं समझ जैसे रूपये की चर्चा में मुझे बात करने के लिए कही थी कि ऐसी नदियां करनी जरूरी है। धर्म आराधना में प्रकृति द्रव्य अपनी अपनी शक्ति से जी रहा है, अनादि रूप जाना है, भविष्य वर्तमान में और भविष्य में उसी से जीवेगा। ऐसी चर्चा उठाने में आई इसमें अशुद्धता का कोई कथन नहीं आता है, परंतु इससे मोक्ष मार्ग धर्म मार्ग का कोई कथन नहीं है। जिन शक्तियों का संबंध बंद भाग मुक्त मार्ग से है वो शक्तियाँ अज्ञान के जीवन में निर्मल रूप से कुशल नहीं रहती है। और आपने बताया है अनुभूति के बिना आत्मा की रुचि नहीं होती, लेकिन रुचि के बिना अनुभूति नहीं होती। आपने आत्मा की रुचि नहीं होगी, सच्ची रुचि की बात है। सच्ची रुचि सच्ची लगन की भूमिका में जो है जिसे अगले आत्मा के लगन नहीं हुए हैं उसे सच्ची रुचि अगले आत्मा की नहीं हुई है जिला का अभिनय और जिसका नाम लिया देखो अपनी अपने को गुजार करने लौकिक जो नाम है लौकिक परिचय है उसके बारे में लेकर कहना शुरू कर दिया जाए तो कैसा कितना उत्तम मिल जाएगी और जरा के बारे में जिनका आदमी वो गुजार जाएगा। अरे मेरी बात बात है और उसके बारे में मेरा भी करेंगे कि आपके बारे में करेंगे आप होंगे कौन होंगे ये धनबादी जो नाम राम राम है उनको तो उसने अपना माना अपने आप को उसने अपना पूजा नहीं किया है और ये भी है कि सच्ची रुचि मुझे सच्ची रुचि मुझे जो जिनको आत्मा अनंत वाली दिखाई दिया है और दूसरी बात को संचार बना होते हैं होने पर भी निर्विकल्प कहने का ध्यान हो जाता है तो प्रारंभिक भूमिका में जबरदस्ती मन लगाकर उपयोग लगाकर हालांकि मन करके जबरदस्ती का धंधा नहीं है लेकिन अपने आप को इन बातों पर लाने के लिए इसका दस यदि प्रकट हो जाएगा तो बात अपने आप गौर हो जाएंगे। रास्ता है कि मैं वहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ ऐसे विकल्प वाली स्थिति में हर प्रकार से अपना ही समर्थन करना आपको कल्याण को देखना और मैं तो ये सामान्य रूप से कहता हूँ कि जैसे दो समाज में होता है कि किसी की क्रिया पर दूसरे को उनके कारण से वो अपने आप को रुपये को मांगता है और सभी के संबंध में यह है कि छोटी सी क्रिया के द्वारा अपने आप को मानते हो अलग मानते हो अनंत शक्तियों के कारण शक्ति पिंड मान कर वैसा शक्ति के ज्ञान के साथ में शक्ति मान का आविर्भाव को नहीं होता है। जो आविर्भाव जो भाव की शैली है जो कदम को आगे है उनको शक्ति मान अलग से विचार करता है। आप उनका हो रही होगी विचार बहुत हो रहे हैं अन्य रुचि नहीं होती तो हमें क्या करना चाहिए। तो सरल का जवाब नहीं सबका फिर रुचि अनुयाय इंद्रिय कहा जाता है, लेकिन रुचि किसी अनुयाय रुचि अनुयाय ये तो हमने निर्वाह सुना है, ये सुना है कि रुचि अनुयाय जहाँ रुचि होती है वहाँ और
और बना है, बस उनमें वो है, खर्चों का रहना है।
Thank you.